السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عالم برزخ کا سفر اپنا شروع کرنے سے پہلے ایک دو بات یہاں پہ ذرا کر لیتے ہیں, تاکہ تھوڑے سے کچھ ہمارے پاس سوالات ہیں اور ماشاءاللہ سے باشعور مجمع ہیں, اور سوال کرنے والوں کے انداز سے ہی سب سے پہلے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں اور تہذیب مہذب طریقے سے سوال کو کرتے ہیں, اور خیال رکھتے ہیں کہ ہم سوال کر رہے ہیں تو سامنے والا مخاطب کون ہے, عورت ہے, مرد ہے, بچہ ہے, جوان ہے, بوڑھا ہے, تو اس سے سوال کرنے والے کی صلاحیت پتہ چلتی ہے اور جواب دینے کا دل بھی چاہتا ہے. بہرحال مولا علی کے ماننے والے جب سوال ہوتا ہے, جب مولا علی کے پاس سوالات آتے تھے کہ میرے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں اور میرے سر میں کتنے بال ہیں اور عجیب سوالات ہوتے تھے, تو مولا بھی جواب دیتے تھے, تو ہم تو خود مولا کے سمجھیں غلام ہیں, مولا کے ماننے والے ہیں, مولا کا علم کہاں اور ہم کہاں جاہل, تو کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی جواب ضرور دیں. سب سے پہلے یہ آپ سب ہم سب کے لیے, میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, سوال کرنے کا طریقہ بہت اچھا ہونا چاہیے تاکہ آپ کو جواب اس طریقے سے ملے کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ کی رہنمائی ہو جائے. سوال اسی لیے کیا جاتا ہے رہنمائی کے لیے, تنقید کے لیے سوالات نہیں ہوتے. تنقید کرنی ہے تو سیدھی تنقید ہوتی ہے, ایک چیز یہاں پہ یہ ہو گئی. دوسری چیز کے ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو میں دوبارہ یہاں پہ بتانا چاہوں کہ سوال یہ تھا کہ جو عالم برزخ کا سفر ہے تو کیا خود وہاں جا کے دیکھا یا مشاہدہ کیا یا جو کچھ, تو یہ میں نے پہلے بھی اپنے لیکچرز میں بتایا تھا اور میں اس کو تھوڑے تھوڑے دن میں بتاتی رہوں گی کہ یہ تصوراتی سفر ہے, تاکہ نئے سننے والے الجھن کا شکار نہ ہوں. اور کلپس پچھلی ساری موجود ہیں, ہماری کسی ایک بہن نے کوئی ایک چینل بنایا ہے, اس پہ سارے ون سے لے کے اب تک کے مستقل وہ ڈال رہی ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کیا چینل ہے, حسینیت کر کے کچھ ہے شاید, کہ جو بھی یہ سفر ہے یہ تصوراتی ہے. جس طریقے سے ہم مصائب منقبت سنتے ہیں, نوحے سنتے ہیں, تصوراتی, بالکل یہ اس طرح کا سفر ہے. اور باشعور لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں پیار محبت سے ایک طرح سے سمجھ لیں گھیر کے آخرت کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے. یہ باشعور لوگ ماشاءاللہ علمی جن کے معاملات ہوتے ہیں ان کو یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. سوال یہ کہ کیا وہاں پہ خود جا کے مشاہدہ کیا, تو یہ پہلے بھی میں نے اپنے لیکچرز میں بتایا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ڈاکٹر پہلے خود مریض ہو, وہ مرض میں مبتلا ہو, پھر وہ سامنے والے مریض کا علاج کرے, کیونکہ اسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں شوگر کے پیشنٹ کا علاج کر سکتا ہوں یا بلڈ پریشر کے مریض کا علاج کر سکتا ہوں, کیونکہ وہ علم حاصل کرتا ہے. علم ایک ایسا دوست ہے کہ جو ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے. ہم جو دوست کا بار بار ذکر کر رہے ہیں وہ علم دوست ہے. آقا خمینی کی چہل حدیث کتاب کو آپ لوگ اگر چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں, اس میں جگہ جگہ یہ بیان ہے, آپ اسے اگر تفصیل سے دیکھیں گے کہ ہر عمل جو ہے وہ مثالی شکل بن کے انسان کے یعنی مرحوم کے ساتھ ساتھ رہتا ہے قبر میں بھی. کسی مومن کو خوشی پہنچائی وہ بھی شکل بن جائے گی, نماز روزہ وہ بھی مثالی جسم بن کے اس کی وہاں پہ مدد کریں گے. علم سے دوستی کریں, کسی کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے, خود اپنا جو ہے علم کو بڑھائیے, کتابیں پڑھیے. اور بہت معذرت کے ساتھ کہ مجھے اندازہ نہیں ہے کہ آقا خمینی کا میں نے یہاں پہ نام لیا تو اس بک کو کوئی پڑھنا بھی چاہے گا یا نہیں, بہت معذرت کے ساتھ. اب ہم اپنے سفر کو آگے شروع کرتے ہیں. آپ لوگ بھی سوچیں گے کہ یہ کہاں کی بات کہاں چلی گئی, مگر کیونکہ یہ سوالات آتے ہیں اور جواب دینا بھی ضروری ہو جاتا ہے, تو اس لیے اس پہ دیا کہ ہو سکتا ہے کوئی شرم میں نہ کرے سوال, تو ان کو بھی جوابات مل جائیں. اور سوال کریں ضرور کریں, مگر اس طریقے سے کریں کہ سوال سوال لگے, کسی کو ایسا نہ لگے کہ تنقید ہو رہی ہے. تنقید کرنی ہے, سیدھی تنقید کریں کہ ہمیں یہ نہیں پسند آ رہا, ہم آپ کی اس چیز کو نہیں مانتے, ٹھیک ہے, خدا حافظ. کل کا ہمارا عالم برزخ کے سفر کا ہم نے جو اپنا سفر کیا تھا کہ خدا کو مومن جو ہے جو کمزور مومن ہے وہ پسند نہیں ہے. ہم واقعہ کربلا میں بھی دیکھتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ حضرت حبیب ابن مظاہر کتنے بزرگ ہیں, کتنے بزرگ ہیں. ہم دیکھتے ہیں قرآن کی طرف کہ اصحاب کیف میں جو ہیں ان کو خدا جوان کہہ رہا ہے کہ وہ جوان ہیں, حالانکہ وہ کتنے سالوں سے وہاں پہ سو رہے ہیں. تو خدا کو وہ جوان پسند ہیں جو روحانی طور پہ جوان ہوں. اب ہم جو اس سفر میں چل رہے ہیں تو ہم نے اپنے علم دوست سے پوچھا کہ ये एक ऐसे मामलात होते हैं कि अगर हम किसी को रोकेंगे, जैसे फेसबुक पे पिक्चर ना डालें बेहिजाब या मेकअप के साथ, या हम किसी के यहाँ शादी है, मिक्स गैदरिंग है, तो वहाँ अगर रोकेंगे तो सामने वाला तो हमसे जो है नाराज़ हो जाएगा। और कभी ऐसा होता है कि फसाद या फितना होने का भी खौफ होता है कि लोग नाराज़ हो जाएं। अगर मेरे सगे भाई के घर, मेरी सगी बहन के घर ऐसे मामलात हों तो एक खौफ हमें होता है। तो वहीं हमारे इन दोस्त ने और अमल जो हमारा दोस्त हमारे साथ है, दोनों ने हमारी रहनुमाई की और हमें बताया कि देखो दुनिया में हर तरह के मामलात थे और बहुत एक अच्छे अंदाज में जो है तुम रहनुमाई करती रहीं कि फेसबुक पे पिक्चर डालने से आप भले ही उस वक्त जा नमाज पे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अव्वल वक्त खड़े हुए हैं, मगर किसी ने कहीं भी दुनिया के किसी कोने में, अब देखें दिन रात का फ़र्क है दुनिया में, कहीं दिन है कहीं रात है, आप मुसल्ले पे हैं और नामहरम आपकी पिक्चर देख रहा है। तो आप तो मुसल्ले पे हैं मगर एक हराम काम हो रहा है, गुनाह हो रहा है। एक तो आपको वो देख रहा है और आपने इस तरह की पिक्चर डाली कि वो उसकी नज़र एक दफ़ा नहीं दो दफ़ा जा रही है, तो ये गुनाह हो रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि नेकियों पे गुनाह गालिब आ जाते हैं, कभी ऐसा होता है नेकियाँ इतनी भारी हो जाती हैं कि गुनाह पे गालिब आ जाती हैं। ये इस तरीके से खुदा का हम देखते हैं कि एक उसूल है कि कभी नेकियाँ भारी हो जाती हैं और कभी गुनाह बहुत भारी हो जाते हैं। यहाँ एक चीज़ ये बहुत जहन में रखने की है हम सब के लिए कि देखिए सारे अमल हमें करने हैं जितने हम सुनते हैं, मगर ये खुदा का इख्तियार है कि वो हमारी बहुत हज़ारों साल की नेकियों और इबादतों में सिर्फ किसी एक नेकी को उठा ले कि तुमने अपने मुलाजिम के साथ फला वक्त में अच्छा सलूक किया, गर्मी में उसे ठंडा पानी पिलाया, बाहर तुम्हारे परिंदे अगर आते थे वहाँ तुमने पानी रख दिया, खुदा ने कहा बस तुम्हारी इस पे बख्शिश है, मैं तुम्हारे आमाल और देखता ही नहीं हूँ, ये खुदा की मर्ज़ी है। और कोई गुनहगार आ जाए, ऐसा गुनहगार कि वो सोचे कि बस मैं तो बहुत छोटे छोटे से गुनाह करती थी, झूठ बोल दिए, मतलब छोटा समझ रही है, गुनाह को छोटा समझना खुद एक बहुत बड़ा गुनाह है कि ये तो कोई गुनाह ही नहीं था, मैं किसी के सामने बेहिजाब चली गई, मैं किसी के सामने इस तरह चली गई। मगर खुदा ने कहा जितने तुम गुनाह छोटे छोटे समझ रही हो, मुझे इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारा गुनाह यही लगा कि तुम बेहिजाब हो, अब तुम गुनहगार ही हो मेरे नज़दीक, भले ही तुम समझ रही थी कोई और भी कोई बहुत बड़ा गुनाह होगा जो जिसको तुम समझ रही थी, मैं उसे नहीं मानता, मैं इसको समझता हूँ। मिसाल समझाने के लिए कि खुदा का ये इख्तियार है कि अगर वो किसी की नेकियाँ देखेगा कि गुनाह उस पर गालिब आ गए और कहीं ये देखेगा गुनाहों पर नेकियाँ गालिब आ गईं, और खुदा किसी नेकी को कबूल कर ले, और कितने भी ऐसा कोई गुनहगार हो कि नाउज़ु बिल्लाह अगर कहा जाए शराबी हो, अल्लाह ना करे हर तरह के गुनाह में हो, बदकिरदारी हो, कुछ भी हो, खुदा उसको ना देखे मगर कहे कि ये जो तुमने झूठ बोला बस मुझे ये बहुत ज़्यादा जो है मैं इसकी तुम्हें सज़ा दूंगा, तो कभी ये ना समझें कि ये गुनाह छोटा है। आज बहुत माजरत के साथ हमारे यहाँ माशरे में सिर्फ गुनाह वो समझते हैं कि जो बात हमारी सोसाइटी में बुरी समझी जाए, हम समझते हैं बस ये गुनाह हो गया, बाकी जो गुनाह हो रहे हैं वो गुनाह नहीं है, ये इसलिए समझाने के लिए। तो हमारे दोस्त ने कहा कि तुम बिल्कुल इस तरह की रहनुमाई करती थी और बताती थी, और रहा जहाँ तक कि भाई शादी में इस तरह के मामलात होते थे कि जहाँ तुम्हारे अपने अजीज़ रिश्तेदार हैं, तो तुम्हारे जहन में जब ये खौफ आता था कि ये मुझसे नाराज़ होंगे तो तुम्हारी दिल में एक आवाज़ आती थी कि खुदा कहता है तो क्या मैं नाराज़ हो जाऊँ, क्योंकि मेरे आगे तो वालदेन की भी नहीं चलेगी कि जहाँ हुक्म खुदा है कि ये काम करना है तो फिर वाजिब है, वो फिर वालदेन की अतात भी वाजिब नहीं रहती। मिसाल जैसे वाजिबात हों, नमाज है, रोज़ा है, वाजिब हैं रमज़ान के रोज़े नमाज़ें, अगर कोई एक तो वालदेन मना नहीं करते मगर एक मिसाल बनाने के लिए कि अगर मना कर देते हैं तो तब भी खुदा की चलेगी, वालदेन की नाराज़गी उस वक्त नहीं देखी जाएगी क्योंकि खुदा की देखी जाएगी कि वो हमारा मालिक है, हमारा पैदा करने वाला है। तो तुम्हारे जहन में ये आता था और तुम फिर खुद ही अपने हिजाब का ख्याल रख के अगर वो मिक्स गैदरिंग है, शादी है, तो तुम वहाँ पर इस तरह जाती थी और फिर तुम्हें सारे मसाइल अल्हम्दुलिल्लाह मालूम थे, तुम अपने मुज्तहिद की जो है तौज़ीह को फॉलो करती थी, आलिम से रुजू करती थी कि कहाँ कहाँ जो है हमें अमर बिल मारूफ करना है, कम से कम इतना होना चाहिए कि अगर आप किसी ऐसी महफिल में मौजूद हों कि जहाँ गुनाह हो रहे हों, मिक्स गैदरिंग है, म्यूज़िक है, तो ऐसा ना हो कि हम भी वहाँ पर मिक्स हो जाएँ। तो इल्म दोस्त ने कहा कि तुम ये सब चीज़ें जहन में रखती थी, उलमा से राबता करती थी कि अगर किसी महफिल में इस तरह जाना भी है तो एक नागवारी तुम्हारे चेहरे पे जाहिर होती थी जिससे लोगों को महसूस हो कि नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा। ये नहीं होता था कि बहालत मजबूरी चले गए और फिर वहाँ जाके हमने इंजॉय भी कर लिया कि एक नागवारी होती थी। फिर उस महफिल से उठते वक्त 25 दफ़ा इस्तग़फ़ार, रसूल खुदा का ये तरीक़ार था, कोई भी महफिल होती थी कि जब आप वहाँ से उठते थे तो 25 दफ़ा इस्तग़फ़ार करके वहाँ से उठते थे। तो तुम्हारे जहन में ये चीज़ें होती थी और कहाँ तक जो है अमर बिलमारूफ करना था कि अच्छाई की तरफ बुलाना था, बुराई की तरफ रोकना था, तुमने ये कोशिश की। तो हमने कहा कि बहुत सी जगह हमने ऐसा देखा कि अगर किसी ने इस तरह की कोशिश की तो लोग उनसे नाराज़ हो जाते हैं, उन्हें बुरा भला कहते हैं। क्योंकि अब देखिए हमारा सफ़र है तो हम बात करते हुए जा रहे हैं और अपने ज़िंदगी की तरफ देखते हुए जा रहे हैं कि हमने क्या क्या मामलात किस तरह यहाँ पे दुनिया में रह के इन पे इन मामलात पे सब्र किया था, क्योंकि सब्र की ही सवारी पे हम इस वक्त मौजूद हैं ना। आप लोग अगर 2 दिन पिछले वाले क्लिप सुने तो उसने कहा कि बिल्कुल कि तुमने वहाँ जो बात बर्दाश्त की या लोगों का जो रवैया बर्दाश्त किया तो बिल्कुल कि तुम्हारे जहन में ये चीज़ें होती थी, मजालिस में सुनती थी कि पैगंबरों ने, इमामों ने, नबियों ने, इमाम हुसैन ने किस तरीके से अजियतें उठाई हैं दीन की तबलीग के लिए, कि अगर कोई आपको कुछ कहता है तो सब्र कर लीजिए। उलमाए कराम कहते हैं कि नबियों ने अपने घर बार दे दिए, इमाम हुसैन ने तो अपना सब कुछ लुटा दिया। नबियों ने तो घर बार नहीं, यानी इमाम हुसैन के लिए कि अपना घर बार लुटा दिया, पैगंबरों को, नबियों को जो तकलीफ़ें अजियतें दी गई। हज़रत नूह को इतने पत्थर मारे जाते थे कि वो पत्थर हटाते थे और फिर तबलीग करते थे, फिर उनकी कौम उन्हें पत्थर मारती थी तो वो गिरिया करते थे। उनका नाम गफ्फार था मगर वो इतना गिरिया करते थे, रोते थे कि उनका नाम नूह पड़ गया, यानी नौहा करने वाला, रोने वाला। इतना गिरिया करते थे उम्मत के लिए कि मैंने तबलीग करता हूँ और ये समझते नहीं हैं, अजियत देते हैं। तो हमारे इल्म दोस्त ने कहा कि बस खुदा भी यही फरमाता था कि तुम लोगों की 4 बातें नहीं सुन सकते, सब्र नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, जबकि तुम करबला के वाक़यात को देखते थे। तो बिल्कुल हमारे जहन में ये सारी चीज़ें थीं अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने ये मामलात किए कि हमें किसी महफिल में जाना है तो मेरा अपना फरीज़ा क्या है कि मैं किस तरीके से जाऊँ, क्योंकि मुझे खुदा को, अहले बैत को, मासूमीन को, इमाम ज़माना को, बीवी सैयदा को नाराज़ नहीं करना। और अगर कोई ऐसे मामलात होते थे कि जहाँ मुझे किसी को बुराई से रोकना होता था, अच्छाई की तरफ लाना होता था, तो बहुत ही हिकमत के साथ मैं उस काम को अंजाम देती थी, क्योंकि मोमिन जो है हिकमत से भरपूर होता है। तो बस आज का सफ़र हमारा यहीं तक, कल इंशाल्लाह हम अपने सफ़र को आगे जारी रखेंगे।